प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 29 जून 2016 के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं किशन राम बिश्नोई जो बीकानेर राजस्थान से हैं, राहुल कुमार आप गया बिहार से हैं, निखिल गौतम आप कोटा राजस्थान से हैं, जितेंद्र तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से हैं और नितिन कुमार कारी आप भी मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। तो किशन, राहुल, निखिल, जितेंद्र और नितिन आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं मुझे एक मेल मिला है जो गोपाल तिवारी का है, न्यू दिल्ली से हैं गोपाल तिवारी। उन्होंने अभी एक एग्जाम दिया था और उन्होंने लिखा है कि उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत कुछ ज्यादातर क्वेश्चंस वीक थे जिनका या तो डेली ऑडियो गाइडेंस में जिन पर डिस्कशन हो चुका है या क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं या जिन पर बहुत अच्छी क्लिपिंग्स अवेलेबल कराई गई है। तो गोपाल, इसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सफलता के लिए, कि आपको सफलता प्राप्त हो और आपने यह सूचित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, खासकर मैंने गोपाल तिवारी के इस मेल की चर्चा संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में, हालांकि उनका मेल काफी डिटेल में है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं उनके डिटेल्स भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो केवल डीएजी के माध्यम से करने में सफल रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात, जो मैसेज मैं आप सब तक कन्वे करना चाह रहा हूं मित्रों, और बीच बीच में मैं करता भी रहता हूं, वो यह कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, नो डाउट इसका लेवल सिविल सर्विस को मैच करता हुआ लेवल है, जो कह लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक हाइएस्ट लेवल है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे इस रूप में प्रस्तुत करूं जिसमें दूसरे भी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो सारे समा जाएं। इसीलिए मेरे बताने का अंदाज भी थोड़ा सा बेसिक्स पर ज्यादा होता है, मैं बहुत ज्यादा हाई फाई पर नहीं जाता, बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी, रूल्स रेगुलेशन, कोटेशंस, रेफरेंसेस पर आपने देखा होगा मैं बातें नहीं करता हूं, क्योंकि उनकी अब कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह गई है। मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो रियल जो डिफरेंस है, सच पूछिए तो सिविल सर्विस में, स्टेट सिविल सर्विस में या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वो टॉपिक का डिफरेंस नहीं है, वो सिलेबस का भी डिफरेंस नहीं है, वो केवल लेवल का डिफरेंस है। लेवल का डिफरेंस कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन है सिविल सर्विस में उसी टॉपिक पर, एक टॉपिक है समझ लीजिए कि उसी टॉपिक पर सिविल सर्विस में थोड़ा सा हायर लेवल पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल होगा, लेकिन उसी को जब स्टेट सिविल सर्विस में या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन उसे थोड़ा आसान तरीके से पूछ लिया जाएगा, उसके बारे में एक केवल ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट इसके बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता है। सिविल सर्विस उसको और हायर लेवल पर ले जाकर के जानने की कोशिश करता है कि आपकी इसके प्रति कितनी समझ है, इस टॉपिक पर आपकी कितनी पकड़ है, एनालिटिकल आप इसे किस तरीके से देख सकते हैं। तो केवल यही फर्क होता है मित्रों, अदरवाइज सच पूछे तो कोशिश मेरी डेली ऑडियो गाइडेंस में यही रहती है कि ये ज्यादा से ज्यादा आपके एरियाज को कवर कर सके। ज्यादा से ज्यादा एरियाज में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एरिया जो आपके एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हों, अदरवाइज कंप्लीट कवरेज तो आप न्यूज सुनते हैं उसमें है, अखबार पढ़ते हैं उसमें है, उसमें आपको चीजें मिल ही जाती हैं। तो मित्रों, गोपाल तिवारी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बात के लिए आप सबको भी धन्यवाद कि कल फिर से मेरे स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों ने जो चिंता जताई है उससे मैं अभिभूत हूं। मित्रों, ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये हीलिंग प्रोसेस से चीजें ठीक होती हैं, वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा डेफिनेटली चीजें भरती चली जाएंगी और स्थिति बेहतर होती ही चली जाएगी, और आप सबकी शुभकामनाओं की ताकत ऑलरेडी मेरे साथ है ही मित्रों, तो बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट पर। लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मैं आज आपको एक अंश पढ़कर सुनाता हूँ। बड़ा खूबसूरत अंश है दोस्तों, और ये सच पूछे तो मेरे दिल के बहुत करीब भी है। करीब इसलिए है क्योंकि आइंस्टीन से जुड़ा हुआ अंश है, और नो डाउट कि आइंस्टीन तो मेरे लिए एक, सच पूछे तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जैसे मेहनत की दृष्टि से जब मैं बात करता हूं तो मेरे लिए थॉमस अल्वा एडिसन मेरे मतलब आइकॉन हो जाते हैं, मेहनत को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। बौद्धिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय को जोड़कर मैं देखता हूं तो फिर आइंस्टीन मेरे लिए एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व बन जाते हैं। कथनी और करनी की एक रूपता को जब लेकर के मैं देखता हूं तो गांधी जी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मतलब पर्सनालिटी के रूप में इमर्ज हो जाते हैं। तो मित्रों, ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आइकॉन हैं, और आइंस्टीन डेफिनेटली आप लोगों के भी आइकॉन होंगे ही, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। तो आज मैं उनके बारे में आपको एक अंश पढ़कर सुना रहा हूं। ये पुस्तक का अंश है जो चार्ली चैपलिन की जो जीवनी है उसमें से मैंने लिया है, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक है ना, इसीलिए मैं आपको वहां से पढ़ करके सुना रहा हूं। बात 1926 की है। एक दिन चार्ली चैपलिन एक दिन चार्ली को यूनिवर्सल स्टूडियो से फोन आया कि प्रोफेसर आइंस्टीन उससे मिलना चाहते हैं। वह उछल पड़ा। लंच के लिए वह यूनिवर्सल लपका। सामने आइंस्टीन थे, उनकी बीबी और सेक्रेटरी। आइंस्टीन से अच्छी अंग्रेजी उनकी बीवी बोल रही थी। वह स्त्री महान वैज्ञानिक के बीवी होने के गर्व से में भरी थी और बार बार इसका प्रदर्शन भी कर रही थी। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि जो आइंस्टीन थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, तो उनकी जो अपनी लैंग्वेज थी जो वो जर्मन लैंग्वेज थी। बाद में जब नाजी ने अटैक किया था हिटलर ने, तो फिर वो वहां से मतलब हिटलर के उससे परेशान होकर के फिर वो अमेरिका आ गए थे, और अमेरिका में उनको सेटल करने के लिए अमेरिका ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अगर आपने नाम सुना हो, वो स्थापित की थी, उसका एक विभाग स्थापित किया था। और ये जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क के पास ही है, न्यूयॉर्क से लगभग 100 किलोमीटर दूरी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक बार वहां होकर के आऊं, उस स्थान को प्रणाम करके आऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से संभव नहीं हो सका। मैं अब फिर से पढ़ रहा हूं उसके आगे से। लंच के बाद वे लोग स्टूडियो देख रहे थे कि प्रोफेसर की बीवी चैपलिन को बगल में ले गई। चार्ली, तुम प्रोफेसर को अपने घर क्यों नहीं बुलाते? वह तुमसे मिलने को कितना उत्साहित थे। मैं उन्हें जानती हूं, यहां भीड़ भाड़ में वह तुमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी और को मत बुला लेना, उन्हें अपने साथ फ्री करो। चार्ली उस स्त्री को देखता रह गया। उसने प्रोफेसर के सामने न्योता रखा, वह झट मान गए। घर पर उनके बीच जमकर बात हुई, यानी कि अब आइंस्टीन चार्ली चैपलिन के घर पर पहुंच गए हैं। घर पर उनके बीच जमकर बात हुई। प्रोफेसर की बीवी ने बड़े दिलचस्प तरीके से वह वाकया सुनाया जब उन्हें रिलेटिविटी की थ्योरी सूझी थी। निश्चित रूप से मित्रों, अब आप थोड़े से थ्रिल्ड हुए होंगे। अब आप उनकी पत्नी का ही वाकया सुनिए जो उसकी चश्मदीद गवाह रही हैं। अपने ड्रेसिंग गाउन में सुबह सुबह प्रोफेसर नाश्ता करने नीचे आए, पर उन्होंने मेज पर पड़ी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, बस मुंह बनाए बैठे रहे। मैं डर गई, कोई चीज खराब तो नहीं बना दी? मैंने दो बार पूछा भी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा तीसरी बार उन्हें झिझोड़ दूं, पर अचानक उनमें हरकत हुई। उन्होंने दो घूंट काफी पी और बोले, क्या बात है, क्या चीज सूझी है मुझे। वह तुरंत उठे और जाकर पियानो बजाने लगे। वह एक धुन भी पूरी नहीं करते और बजाना छोड़कर नोट्स लिखने लगते, फिर पियानो बजाने लगते, फिर दो मिनट तक कुछ लिखने लगते। पियानो बजाने और उस बीच नोट्स लिखने का यह सिलसिला देर तक चला। क्या बात है, क्या चीज है, वह बोले। मुझे भी बताओ, सस्पेंस क्यों बना रहे हो? मैं अभी इसका विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, मुझे समय चाहिए। फिर वह ऊपर अपने कमरे में चले गए, यह कहते हुए कि उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब न किया जाए। 2 हफ्ते हो गए, वह शाम को सिर्फ 5 मिनट की वॉक के लिए नीचे आते, उनका खाना भी मैं ऊपर ही भेजती। ठीक 2 हफ्ते बाद शाम को वह थके थके से नीचे उतरे और बोले, हो गया या रहा। उनके हाथ में सिर्फ 2 पन्ने थे। 2 हफ्तों में सिर्फ 2 पन्ने? मुझे नहीं पता था वो 2 पन्ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। वह था सापेक्षता का सिद्धांत। मित्रों, ये सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन को कैसे सूझा, इसके बारे में एक चश्मदीद गवाह के शब्द हैं। इसके आगे ही लिखा हुआ है मित्रों कि अगली बार चार्ली बर्लिन में आइंस्टीन के घर गए। खुद चार्ली बर्लिन में आइंस्टीन के घर गए। अब देखिए कि वह 2 छोटे कमरों का फ्लैट था। एक में प्रोफेसर का स्टडी था, बाहर वाले कमरे में वह ऐतिहासिक पियानो था। प्रोफेसर की बीवी बोली, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि प्रोफेसर के पास पैसे ही नहीं है। रिसर्च यूनिवर्सिटी इन्हें लाखों डॉलर देती है पर ये कभी उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। मित्रों, कितनी विचित्र सी चीज है ना, और कितनी खूबसूरत चीज है। इनके पास पैसे नहीं है, रिसर्च यूनिवर्सिटी इनको लाखों डॉलर देती है पर ये उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। दुनिया को बदल देने वाला इतना महान वैज्ञानिक 2 छोटे-छोटे कमरों के फ्लैट में रह रहा है। उनकी वो कमरा ही उनकी लैब थी, उनका अध्ययन कक्ष था, सब कुछ था। मित्रों, यहां जो बात उन्होंने कही कि लाखों डॉलर मिलते हैं लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं करते, आप अर्थ लगा सकते हैं इसका मतलब है कि चार्ली चाहे आइंस्टीन बहुत कंजूस रहे होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे? इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको जरूरत हो। सच यह है कि आइंस्टीन को इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी, और जिस चीज की उनको जरूरत थी उसका यहां उल्लेख हो गया है कि सामने के ड्राइंग रूम में उनका ऐतिहासिक पियानो था। वो पियानो बहुत खूबसूरत बजाते थे और बहुत शौकीन था, अपने पियानो के बहुत शौकीन थे। आइंस्टीन 2 माध्यमों से प्रकृति से जुड़े रहते थे, या अपना मनोरंजन करते थे या स्पिरिचुअलिटी गेन करते थे, एक पियानो बजा करके और दूसरा नौकायान करके। वो नौकायान खूब करते थे, जब भी उनका मन करता था नाव उठाते थे और वो समुद्र में चले जाते थे नौकायान करने के लिए। मित्रों, जिंदगी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या शेप लेती है, कैसे व्यक्ति अपने को अपने उद्देश्यों के प्रति कंसंट्रेट करता है, कैसे अपने उद्देश्यों के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, इसमें एक छोटा सा नमूना आप आइंस्टीन के संदर्भ में मुझे लगता है कि शायद देख पाए होंगे। मित्रों, जिन्होंने भी बड़े काम किए हैं आसानी से नहीं हुए हैं, और अगर बड़े काम आसानी से हो जाए तो मान करके चलिए कि फिर वो काम बड़ा है ही नहीं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह हमें रखना ही नहीं चाहिए। प्रकृति पर इतना विश्वास कीजिए कि हम वही पाते हैं जिसके हम योग्य होते हैं। ये बात अलग है कि हम अपनी योग्यता का मूल्यांकन तो बहुत अधिक कर लेते हैं लेकिन योग्यता के अनुकूल कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए उसी अनुपात में हमें मिल नहीं पाता जो हमारा मूल्यांकन था, बात खत्म हो जाती है। दोस्तों, इच्छा के अनुपात में नहीं मिलता है, योग्यता के अनुपात में मिलता है, और योग्यता वह होती है जो की जाए। मेरे पास बहुत पता लगा कि सोने से भरा हुआ बॉक्स है और मैं उस बॉक्स पर बैठकर भीख मांग रहा हूं, तो हूं तो मैं अरबपति खरबपति लेकिन मांग भीख रहा हूं क्योंकि मैं उस बॉक्स में जो गोल्ड भरा हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो हमारी योग्यता ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, याद रखिए, उसका इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में दोस्तों बहुत ज्यादा खबरें नहीं थी, सच पूछिए तो 1-2 ही खबरें थी जिनको लेकर के हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और उसमें भी एक जो इम्पोर्टेंट खबर है सच पूछिए तो वो तो लगभग इस तरह की खबर है कि जिस पर हम लोग इससे पहले काफी बातचीत कर चुके हैं, और वो ब्लैक मनी से जुड़ी हुई खबर है। ये मान करके चलिए फ्रेंड्स कि ये जो ब्लैक मनी का जो टॉपिक है वो सिविल सर्विस की दृष्टि से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूंकि इस पर इतनी बात होती है, काफी आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल लिखे जाते हैं, समय समय पर सरकार इसके लिए इसके खिलाफ कदम भी उठाती है, और ये आज से नहीं हो रहा है। सच पूछे तो जब से मैंने तैयारी शुरू की 1980 से ये होता चला आ रहा है। तो ये टॉपिक हमेशा एक ग्रीन टॉपिक है, मतलब हरा टॉपिक है जो लगातार जीवित रहता है। इसीलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और पूछा जाए या न पूछा जाए इस पर आपकी जानकारी होनी ही चाहिए, आपको कोई लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। इस पर कैसे आपकी जानकारी अपडेट हो, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ब्लैक मनी क्या होता है, आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक मनी जनरेट क्यों होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी क्यों सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, क्यों इकट्ठी हो रही है, इसके हमारे अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, इन सब बातों के बारे में भी आप जानते हैं। मित्रों, अब सवाल यह है कि इसको आप अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस में यदि कोई प्रश्न पूछा गया ब्लैक मनी पर, तो वो अपडेटेड नॉलेज आपका चेक करेगा कि करंट की चीजें, बिल्कुल तुरंत की चीजें आपको कितनी मालूम है। अभी खासकर जो ब्लैक मनी के बारे में नई सरकार के अभी आने के बाद से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से, आप थोड़ी सी एक दो चीजें आपको कुछ नई सी दिखाई दे रही होंगी, मैं उधर ही आपको इशारा कर रहा हूं। पहला तो यह है दोस्तों कि जो विदेशों में जो हमारा धन जमा है उसके प्रति बहुत सतर्कता है कि कैसे हम उस धन को भारत ला सकें। तो आप देख रहे हैं कि लगातार उन चीजों को लेकर के कोशिश हो रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि सरकार की कोशिश इस बात की हो रही है कि जहां से ब्लैक मनी जनरेट होती है, जहां से पैदा होती है, उसको कैसे रोका जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक उसको नहीं रोका जाएगा तो ठीक है, हम इधर कंट्रोल करेंगे और उधर वो पैदा होता रहेगा, तो वो रक्त बीज की तरह चलता जाएगा कि जहां जहां रक्त की बूंदें गिरेंगी वहां वहां एक और नया राक्षस पैदा होता जाएगा, तो उससे समस्या का निदान नहीं होगा। तो आपने देखा कि सरकार ने इसके बारे में कुछ कदम उठाए हैं, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिहाज से ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार ने नए क्या कदम इस तरीके के उठाए हैं। जैसे आपने मॉरिशस से देखा कि एक दोहरे कराधान की संधि की गई है, खत्म करने की संधि की गई है। फिर आप और दूसरी चीजें देख रहे हैं कि पी नोट्स के बारे में, पी नोट्स जो निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां हैं वो अपने निवेशकों को जारी करती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस पर भी सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की, उसके नियम बदले हैं, रोक नहीं कहना चाहिए, उसके नियम बदले हैं ताकि ब्लैक मनी का जो जनरेशन है वो कम हो सके। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत कई देशों के साथ भारत इस तरह के समझौते कर रहा है कि कर टैक्सेस वगैरह के बारे में वो एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान करेंगे। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो विदेशों में अगर कोई पैसा जमा कर भी देगा तो सरकार उसकी जानकारी, वहां की जो सरकार होगी उसकी जानकारी भारत सरकार को देगी, तो वो भी एक स्टेप है। चौथा आप देख रहे हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी जो जनरेट होती थी दोस्तों, वो रियल एस्टेट क्षेत्र में होती थी, है ना, संपदा के क्षेत्र में, जमीन मकान इन सब क्षेत्रों में। उसमें भी सरकार अब अपनी तरफ से उसका नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, सर्किल रेट फिक्स करके, और फिर आप देख रहे हैं कि अभी रियल एस्टेट विधेयक लेकर के आ गई है, तो उसमें भी अब ब्लैक मनी के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाएगी, तो वहां उसका जनरेशन कम होगा। फिर एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो आपके कैशलेस लेन देन को लेकर के भी हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर राशि से अधिक का लेन देन चेक से करेंगे, बैंक के माध्यम से करेंगे, और उसमें आपके पीएनआर नंबर का उल्लेख होगा। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति की है और उसने साल भर में 50 बार लेन देन किया है, और 50 बार उसको पीएनआर नंबर अपना देना पड़ेगा, तो 50 बार का लेन देन वो एक जगह पर इकट्ठा होकर के वो जो डेटा है वो इनकम टैक्स ऑफिस के पास उसका डेटा होगा। तो जब वो अपना भरेगा, फाइल करेगा इनकम टैक्स का स्टेटमेंट, तो उससे वो मैच करके देख लेंगे कि ये सही इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो ये एक अगला स्टेप हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं जो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका ध्यान ज्यादातर इस पर होना चाहिए। न्यूज में जो बात आपने सुनी है दोस्तों, वो देखा कि जो भी पैसा आपके पास है काले धन के रूप में, उसका 45% सरकार को दे दीजिए, तो 55% जो आपका बचेगा, 100 रुपए में 45 रुपए सरकार को दे दीजिए, और तो 55 रुपए जो आपका बच जाएगा वो व्हाइट मनी आपका हो जाएगा। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर कोई 45% देता है तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं दे रहा है, क्योंकि जो इनकम टैक्स का जो हायर स्लैब है वो 30% का है। मतलब अगर आपकी एक निश्चित आय से अधिक की आय हो रही है तो उस पर आप 30% इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि 30% तो वह भी इनकम टैक्स देगा ही जो बड़ी ईमानदारी के साथ दे रहा है। तो इन्होंने तो ब्लैक मनी इकट्ठी की है, और फिर आप देख रहे हैं कि सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो डरे नहीं और ज्यादा से ज्यादा अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करें, बार बार वो कह रही है कि ये जो आपकी सूचना है ये गुप्त रखी जाएगी, बताई नहीं जाएगी कि किसने कितना पैसा दिया है आपके खिलाफ, इसको लेकर के आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, आप तो पैसा दे दीजिए और बाकी व्हाइट मनी आप रख लीजिए। मित्रों, सच पूछे तो इस तरह की चीजों की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, जैसे 30% है तो 45% दे करके वो व्हाइट बन जाएंगे, तो बेचारे उन लोगों ने क्या, उनकी क्या गलती थी, इस तरह की बातें भी होती हैं। और एक ये इस तरह की बातें भी होती हैं कि ये तो एक प्रकार से जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा इससे मिलेगा, क्योंकि सरकार इस तरह की योजनाएं इससे पहले भी ला चुकी है लेकिन काले धन पर नियंत्रण नहीं हुआ, इस तरह की बातें भी होती हैं। देखिए, उसका दोनों पक्ष हैं, निश्चित रूप से आपको दोनों पक्ष मालूम होने चाहिए कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, इसके माइनस पॉइंट क्या हैं, और फर्दर आगे चल करके क्या किया जाना चाहिए। आपने न्यूज में ये भी सुनी होगी, जो सच में पूछिए तो बड़े आश्चर्य की बात होती है, कि भारत में करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं, मात्र 1.5 लाख लोग, जिनकी जो आय है वो 50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है। दोस्तों, कैसे हो सकता है 125 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनकी जो आय है वो 50 लाख रुपए से ऊपर की है। ये मतलब एक आंकड़े के रूप में ठीक है, वो सही भी है क्योंकि ये तो गिनती में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इससे साफ लगता है कि जो कर की चोरी हो रही है, तो जो कर की चोरी हो रही है वो इसी काले धन से जुड़ा हुआ एक अलग टॉपिक हो जाता है। कर की चोरी क्यों की जाती है, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। देखिए, कर की चोरी इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो काले धन से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कर की चोरी का मतलब ही है काले धन। लेकिन ये जो कर की चोरी का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा काले धन से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज उसके रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों को आपको एक मानकर नहीं चलना है। तो मित्रों, ये काले धन पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई न्यूज में, और कुछ खास नहीं था फ्रेंड्स। एक उस खासकर ब्रेग्जिट के बारे में आप काफी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख रहे हैं कि एक जो ब्रेग्जिट का जो मामला है वो काफी एक संवेदनशील मामला हो गया है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है। कल मैंने अपने डेली ऑडियो में कहा था कि मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करने का अगर समय मिलेगा तो करूंगा, और इनफैक्ट वो ब्रेग्जिट के बहाने ही वो टॉपिक मैंने अपने लिए चुना था। मित्रों, टॉपिक इस बात को लेकर है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में दुनिया के देशों में निर्णय लेने के लिए जनमत कराए जाने की एक परंपरा सी चल गई है कि लोगों से पूछा जाए। जैसे ब्रेग्जिट के बारे में, क्या ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लोगों से पूछा गया। ऐसा ही कुछ यूक्रेन के मामले में हुआ था 1.5-2 साल पहले, कि यूक्रेन रूस के साथ रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा, उसका एक एरिया था तो उन्होंने रूस के साथ रहने की बात कर दी, वो यूक्रेन में ऐसा ही हुआ। आपको ध्यान होगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 1 साल से भी कम समय हुआ, ग्रीस में जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो पूछा गया कि हमें बेल आउट पैकेज चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि हमें आर्थिक मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें मदद नहीं चाहिए, ये ग्रीस में हुआ। अगर आपको ध्यान हो, इससे ठीक कुछ समय पहले, मतलब इस, चलिए अब गिनाने का कोई अर्थ नहीं है, इस तरह की चीजें मतलब काफी होने लगी, अभी लेटेस्ट में ही है, 1.5 महीने पहले ही मैंने आपको कुछ दिनों पहले के डीएजी में बताया था कि स्विट्जरलैंड में हुआ कि भाई हम आपको बेसिक सैलरी देना चाहते हैं ताकि आपका जीवन निर्वाह होगा हो सके तो स्विट्जरलैंड के लोगों का जन्मत कराया गया, तो उन्होंने मना कर दिया। और आप देखिए कि भारत में यही हो रहा है कि अभी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, इसके बारे में दिल्ली की जनता से पूछ लिया जाए, तो वो भी एक जनमत कराने की बात कह रहे हैं। यह सवाल ये उठता है मित्रों की जो चीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसकी व्यावहारिकता पर आप विचार कीजिए कि प्रैक्टिकलिटी कितनी है, क्या यही डेमोक्रेसी है। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक छोटा सा देश है, 80 लाख की तो आबादी है, वहां मतदान करने वाले कितने लोग होंगे, 50-60 लोग होंगे, छोटा सा एरिया है, तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हर चीज पर वहां मतदान करा लिया जाता है। लेकिन जो बड़े देश हैं जिसमें भारत है, तो वहां क्या इस तरह की पद्धति सटीक हो सकती है। दूसरा पॉइंट यह भी हो सकता है कि भाई क्या बहुमत के आधार को इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जाएं कि ये राज्य इसमें देश में रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये इस संघ में रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या गारंटी है कि जो बहुमत है वो प्रबुद्ध वर्ग ही है, क्योंकि अभी तक का इतिहास तो यही है कि प्रबुद्ध वर्ग बहुत छोटा सा होता है। तो इसका मतलब है कि जो अप्रबुद्ध वर्ग है या बहुत ही जो आम लोग हैं वो इतने प्रिवेल कर जाएंगे कि प्रबुद्ध लोगों की जो बौद्धिकता है वो उसको कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे, क्या ऐसी सिचुएशन आने वाली है। एक दोस्तों ये भी लगता है कि अगर हर बात पर आपको जनमत ही कराना है, खासकर इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज पर, तो जो सरकार के जो जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे गए हैं, लोगों ने जो सरकार में अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे गए हैं, उनका फिर रोल क्या है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, कैमरन की सरकार थी, तो संसद वहां की निर्णय लेती, पार्लियामेंट निर्णय लेती कि यूरोपीय संघ में हमें रहना है या नहीं रहना है, उसके लिए जनता के पास जाने की जरूरत क्या थी। तो मित्रों इस तरह से अब इसको लेकर के कई तरह की बातें उठने लगी हैं। ब्रिटेन में तो आप देख ही रहे हैं कि यहां तक मांग की जा रही है कि नहीं फिर से जनमत कराया जाए, क्योंकि जो फर्क है वो 4% का, 3.9% का, हमें छोड़ना है उसके पक्ष में 51.9% है, जो नहीं छोड़ना है उसके में थोड़े से कम हो गए, तो 4% का फर्क मान लीजिए मोटे तौर पर। इन 4% के फर्क में जो स्विंग होगा, याद रखिए वो सिर्फ 2% का है। अगर 52% से 2% लोग निकल करके उधर चले जाते तो 50-50 हो जाता। तो एक ये भी सवाल उठता है, तो क्या इतने थोड़े से अंतर से इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, लिए जाने चाहिए। भारत के संदर्भ में देखिए तो जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं कि संविधान में संशोधन करना है, तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सभी संशोधन बहुमत से हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ में आपने पढ़ा होगा कि 2/3 चाहिए, यानी 66% चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो संशोधन है, जो बहुत गंभीर संशोधन है, जिनके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होंगे, वहां 66% चाहिए। तो अगर ब्रिटेन में भी इस तरीके का होता कि भाई ये चूंकि बहुत बड़ा फैसला होना है तो हमें 66% वर्सेस लेना पड़ेगा, तो आज यूरोपीय संघ में ब्रिटेन बना होता, और आज ब्रिटेन के सामने भी आप देख रहे हैं कि एक विचित्र सा संकट खड़ा हो गया, यूरोपीय संघ के सामने भी संकट खड़ा हो गया। और सच पूछे तब तो ब्रिटेन की काफी थू थू भी हो रही है, यूरोपीय संघ बार बार यही कह रहा है कि भैया तुम जल्दी से हम निकलो यहां से, क्योंकि उनको खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो रिमेनिंग जो 27 कंट्रीज हैं उसमें भी ये वायरस फैल जाए, और ब्रिटेन खुद टूटने के कगार पर आ रहा है। स्कॉटलैंड कह रहा है कि नहीं, हमें ब्रिटेन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि हम तो यूरोपीय संघ में रहना चाहते हैं, वहां के लोगों ने यूरोपीय संघ में रहने के फेवर में मतदान किया था। आयरलैंड अलग आवाज उठ रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है या एक पॉलिटिकल जो डिसीजन लिया गया, उस पॉलिटिकल डिसीजन के कारण ही कितना बड़ा संकट उठ खड़ा हुआ। तो क्या इस इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस को जनता के हाथ में सौंपना चाहिए, क्या जनता में इतनी क्षमता होती है, राजनीतिक समझ कह लीजिए या भविष्य दृष्टि होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है कि वो इनके बारे में सही निर्णय ले सके। तो दोस्तों ये एक इश्यू है, इस पर आप लोग सोचने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, कुछ प्रेस क्लिपिंग्स, अच्छे प्रेस क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जनसत्ता में एक लोकपाल के दायरे पर बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और मित्रों मैं आता हूं ईमेल पर, कुछ मेल्स हैं जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर के बात पूछी गई है। देखिए जहां तक मैं समझता हूं, जो भी आप मीडियम लें उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, मतलब भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी खूब ये शोर शराबा फैला हुआ है कि हिंदी मीडियम के लड़के कम सिलेक्ट हो रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के ज्यादा हो रहे हैं। इसकी रियलिटी की मैं बात नहीं करता, लेकिन याद रखिए कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम लेकर के सिलेक्ट नहीं हो सकते, और आप हिंदी मीडियम में होंगे तो आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। आप जिस मीडियम में भी हो, आपके पास उसकी भाषा की समझ होनी चाहिए, भाषा की पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप उसमें अपने आप को अच्छे से और शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, यानी कि लिखने की वर्तनी और व्याकरण की गलतियां न हो। दोस्तों मेरा तो यही उत्तर है। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर आप जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं क्या उतनी सफिशियंट है, अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकाना प्रश्न है। आपको अखबार पढ़ना ही है, बिना अखबार पढ़े आप इन क्लिपिंग्स को नहीं समझ सकते। आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। फिर दोस्तों सी सेट की तैयारी के बारे में कुछ लोगों ने मेल लिखे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सी सेट की तैयारी को लेकर के मैंने एक वीडियो रिलीज किया है, वो afis.com पर भी अवेलेबल है, उससे आप देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आप सी सेट की तैयारी कैसे करेंगे, पूरी रणनीति की मैंने चर्चा की है, उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं अपने सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रियंका रावत गाजियाबाद से, संदीप कुमार लखनऊ से, स्वाति गुप्ता झालवाड़ा राजस्थान से, अजय कुमार द्विवेदी दिल्ली से, रोहित शाह अलीपुर वेस्ट बंगाल से, कविता शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, राघवेंद्र मिश्र, अदिति जावर जबलपुर मध्य प्रदेश से, रजनीश मुजफ्फरपुर बिहार से, राजकुमार सीकर राजस्थान से, कीर्ति कनिक उज्जैन मध्य प्रदेश से, चिराग ढोलकिया अहमदाबाद से, साधना यादव लखनऊ से, सत्येंद्र सिंह इलाहाबाद से, यासिर रसीद कुमार मौर्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, सुमित मिश्रा कानपुर यूपी से, ममता चहर आगरा से, अनामिका कुमारी बोकारो झारखंड से, ब्रजेश मिश्रा महाराष्ट्र से, और हरी चरण कैवर्त बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।